ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार और जेनजी प्रतिनिधि बीच हुए 10 सूत्रीय समझौता मंत्रिपरिषद से अनुमोदित। विजिट वीसा मामले में सहसचिव तीर्थराज भट्टराय सहित 7 लोगों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप में अख्तियार द्वारा विशेष अदालत में मुकदमा दर्ज। नेकपा एमाले का 11वें महाधिवेशन में कर का पूर्ण सहमति का प्रयास न करने की अध्यक्ष केपी शर्मा ओली का कथन। और भारत के अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में छगलागाम के पास ट्रक हादसा, 21 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिपरिषद की बैठक ने सरकार और जेनजी आंदोलन के प्रतिनिधियों के बीच हुए 10 बुदे समझौते को मंजूरी देते हुए संबंधित मंत्रालय द्वारा उच्च प्राथमिकता के साथ उसे लागू करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में आज हुई बैठक में सरकार और जेनजी प्रतिनिधियों के बीच कल हुए समझौते को नेपाल राजपत्र के अतिरिक्तांक के रूप में प्रकाशित करने का फैसला किया गया है। ये जानकारी संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री और सरकार के प्रवक्ता जगदीश खरेल ने दी। इसी बैठक में पिछले भाद्र 23 और 24 गते की घटना की जांच के लिए गठित जांच आयोग के कार्यक्षेत्र को विस्तार देने का फैसला किया गया, यह बात मंत्री खरेल ने बताई। इसी तरह मंत्रिपरिषद की बैठक ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग टंगाल में कार्यरत सह सचिव पुष्कर सापकोटा को सचिव के पद पर पदोन्नति कर प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में तैनात करने, समाज कल्याण परिषद के रिक्त सदस्य सचिव पद पर नियुक्त किए जाने सहित अन्य फैसले किए, यह जानकारी संचार मंत्री खरेल ने दी। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस आज नेपाल में भी विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ मनाया गया है। दिवस के अवसर पर वन तथा वातावरण मंत्रालय द्वारा आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री डॉ मदन प्रसाद परियार ने हिमालय संरक्षण के मुद्दे पर नेपाल द्वारा विश्व समुदाय के बीच अग्रणी और नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मंत्री डॉ परियार ने कहा कि नेपाल भी जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से प्रभावित देश है और इसके प्रभावों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। मंत्री डॉ परियार ने वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण ग्लेशियरों के पिघलने, हिमनदी झीलों के बनने और फटने तथा इसके नकारात्मक प्रभावों से तटीय निचले क्षेत्रों में रहने वाली 2 अरब से अधिक आबादी के प्रभावित होने की जानकारी दी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि पार्टी के 11वें महाधिवेशन में जबरन सहमति की कोशिश नहीं होगी। प्रेस चौतारी नेपाल द्वारा आज काठमांडू में आयोजित संपादकों के साथ संवाद कार्यक्रम में बोलते हुए अध्यक्ष ओली ने कहा कि पूरी कोशिश यही होगी कि सर्वसम्मति से नेतृत्व चुना जाए, लेकिन अगर सहमति नहीं बन पाई तो जबरदस्ती नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के समक्ष जय मातृभूमि पार्टी ने ज्ञापन पत्र सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री कार्की से आज मुलाकात कर सरकार को सुशासन के मूल कार्यदेश पर केंद्रित रहने, चुनाव का माहौल बनाने के लिए जेनजी आंदोलन के दमनकारी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग सहित ज्ञापन पत्र सौंपा है। इसी प्रकार पार्टी ने सरकार का मूल मुद्दा भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई होने के कारण इसी पर केंद्रित रहकर अपने कार्य कार्रवाई को आगे बढ़ाने की मांग भी की है। मुलाकात में प्रधानमंत्री कार्की ने अपने एजेंडा को लेकर चुनाव में जाने का सुझाव देते हुए बताया कि सरकार भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई को निरंतर आगे बढ़ा रही है। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत विधान व्यवस्थापन समिति में चलचित्र विधेयक 2081 पर आज से धारावार विचार विमर्श शुरू हुआ है। विधेयक पर विशेषज्ञों, सरकार वालों और संशोधन प्रस्तावक सांसदों के साथ विचार विमर्श पूरा होने के बाद समिति ने धारावार विचार विमर्श प्रारंभ किया है। विधेयक की प्रस्तावना में चलचित्र क्षेत्र को कलात्मक, सृजनशील और शिक्षाप्रद शब्दों से जोड़ने के विषय पर सांसदों के बीच सहमति बनी है। बैठक में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने कहा कि विधेयक पर प्रस्तुत संशोधनों को सरकार वालों की धारणाओं और विचार विमर्श के दौरान सांसदों द्वारा उठाए गए मुद्दों को समाहित करके आगे बढ़ा जा सकता है। चलचित्र विधेयक पर 30 सांसदों ने एकल और संयुक्त रूप से 10 समूहों में कुल 189 बिंदुओं पर संशोधन प्रस्ताव दर्ज कराए हैं। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हा, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। विजिट वीजा में विदेश जाने वाले नेपालियों के साथ अवैध रूप से रकम वसूलने के आरोप में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने सहसचिव तीर्थराज भट्टराई सहित 7 लोगों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुकदमा दर्ज किया है। अख्तियार ने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय के तत्कालीन प्रमुख एवं सहसचिव भट्टराई सहित 7 लोग और 2 कंपनी के विरुद्ध मुकदमा चलाया है। अख्तियार ने बीते चैत्र 7 गते सहसचिव भट्टराई को गिरफ्तार करने के बाद विजिट वीसा प्रकरण सतह में आया था। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने कहा कि शिक्षित नेपाल बनाने और पठन संस्कृति का विकास करने के लिए किताब यात्रा का महत्वपूर्ण भूमिका है। आज किताब यात्रा के 7वां संस्करण का काठमांडू में उद्घाटन करने के दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षित नेपाल निर्माण के लिए शिक्षा में सभी का पहुंच अभिवृद्धि किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल समक्ष नेपाल के लिए विभिन्न 5 देशों के नवनियुक्त राजदूतों ने अपनी अपनी ओहदा के प्रमाण पत्र पेश किए हैं। आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलग अलग विशेष समारोह में राष्ट्रपति पौड़ेल समक्ष नेपाल के लिए उज्बेकिस्तान के राजदूत सरदोर मिर्जा यूसुपोविच रुस्तामबायेव, रोमानिया की राजदूत सेना तलीफ, ताजिकिस्तान के राजदूत लुकमोर बोबो कालोनजोदा, आइसलैंड के राजदूत बेनिडिक्ट और क्यूबा के राजदूत हुआन कार्लोस मरसान अगुइलेरा ने ओहदा के प्रमाण पत्र पेश किए। ये जानकारी राष्ट्रपति के कार्यालय ने दी। समारोह में नेपाल सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों की उपस्थिति थी। सरलाही की विष्णु गांवपालिका वार्ड नंबर 6 से 1000 दर के 95 थान नकली नोट सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ऑन टेस्ट लिखा हुआ मोटरसाइकिल पर भारत से नेपाल की ओर आ रहे अवस्था में जिला के ही कौड़ेना गांवपालिका वार्ड नंबर 5 टपकैया के 30 वर्षीय फिरोज खान को नकली नोट सहित गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी केंद्रीय प्रहरी समाचार कक्ष ने दी। आने वाले पूस 1 गते से बाघ का गणना किया जाएगा। चितवन और परसा राष्ट्रीय निकुंज के एक ब्लॉक बनाकर गणना किया जाएगा। बाघ रहे बांके, बर्दिया और शुक्ला फाटा राष्ट्रीय निकुंज में भी बाघ का गणना किया जाएगा। मूर्धन्य मूर्तिकार बाल कृष्ण तुलाधर का 91 वर्ष के उम्र में आज निधन हो गया है। शहीद गेट में स्थापित राजा त्रिभुवन के शालिक लगायत शहीद गंगालाल, दशरथ चंद, धर्मभक्त और सुखराज के शालिक तथा वहां रहे 4 तस्वीरों उनका सृजना का है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के अरुणाचल प्रदेश के उंजा जिले में छगलगांव के पास मजदूरों से भरा एक ट्रक पहाड़ी से नीचे गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हुई है। उंजा पुलिस ने बताया है कि यह घटना सोमवार रात 9 बजे के आसपास की है, लेकिन इसका पता अब चला है जब इस हादसे में बचा एक घायल मजदूर किसी तरह हेडक्वार्टर शहर पहुंचकर प्रशासन को इसकी जानकारी दी। इस हादसे को पुष्टि करते हुए उंजा जिले के पुलिस अधीक्षक अनुराग द्विवेदी ने बीबीसी से कहा कि 22 मजदूरों को लेकर असम के अरुणाचल प्रदेश आ रहा एक ट्रक छगलगांव से महज 10 किलोमीटर पहले पहाड़ी से एक गहरी खाई में गिर गया था। पुलिस के अनुसार अब तक 13 मजदूरों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि बाकी लापता लोगों की तलाश जारी है। इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी मजदूर असम के तिनसुकिया जिले के रहने वाले थे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार और जेएनजी प्रतिनिधि बीच हुए 10 सूत्रीय समझौता मंत्रिपरिषद से अनुमोदित। विजिट वीसा मामले में सह सचिव तीर्थराज भट्टराय सहित 7 लोगों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप में अख्तियार द्वारा विशेष अदालत में मुकदमा दर्ज। नेकपा एमाले का 11वें महाधिवेशन में कर का पूर्ण सहमति का प्रयास न करने की अध्यक्ष केपी शर्मा ओली का कथन। और भारत के अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में छगला गांव के पास ट्रक हादसा, 21 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।